gimana gimana?
Nih, lo yang sekarang nih. Abi cerita mana?
Cerita.
Abi cerita apa mana? Hah? Ini cerita mana?
Abi nak baca kan? Sudah di sini tu kan?
सुबह जहाँ अपन ने प्रारंभ किया था उस उजागर से जीवन के शक्ति पर विचार करना है। सुबह ये बात चली थी कि साधुवाद आत्मा को ज्ञान मात्र कहता है, साधुवाद आत्मा को ज्ञान मात्र कहता है। यद्यपि ज्ञान में आत्मा के अनंत धर्म झलकते हैं, आत्मा में से अनंत धर्म ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन कहने की बारी जब आएगी तब एक ही धर्म के द्वारा कहा जाएगा। बराबर भगवान ज्ञान में आत्मा को जब जाना जाता है, ज्ञान आत्मा की अनुभूति करता है, तो ज्ञान में अनंत धर्म झलकते हैं। साधुवादी के ज्ञान में भी आत्मा के अनंत धर्म झलकते हैं, लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो एक ही धर्म के द्वारा कहा जाएगा। तो उस काल में ज्ञान आत्मा को ज्ञान मात्र कहता है। बात समझने वाली है? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानियों के ज्ञान में अनुभव में जिस काल में विषय बनता है उसी काल में चैतन्य गायक भगवान आत्मा का स्वरूप का निर्णय होता है और उसमें अनंत धर्म जानने में आते। बराबर। तो अनंत धर्म जानने में आते हैं, अनुभव में आते हैं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञानी को होता है। सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में ये बात आती है, लेकिन जब कथन की बात आती है तब वो ज्ञानी भी जानते हुए भी वचन के द्वारा ऐसा कह नहीं सकता, इसलिए एक धर्म के द्वारा ही कहता। तो कौन से धर्म के द्वारा कहता है? ये अनंत धर्म स्वरूप ही मैं ज्ञान मात्र आत्मा हूँ। तो क्या कहा उसने कि मैं तो ज्ञान मात्र आत्मा हूँ। अब सिर्फ एक ज्ञानी की बात नहीं कि यहाँ अनंत ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा, अनंत ज्ञानियों के द्वारा दुगर पत्ते पंक्ति अत्र स्वात्म वस्तुनि ज्ञान मात्र तया अनुशास्य माने अभी न तत् परिकोप ज्ञान मात्र से आत्मन आत्मवस्तुन स्वयमेव अनेकांतत्वात्। ये समझना थोड़ा भारी पड़ेगा। क्या लिखा है कि अग्र तू आत्म वस्तु नहीं, यहाँ तो आत्म वस्तु में ज्ञान मात्र तया ज्ञान मात्र पने का आरोप करके अनुशास्य माने उस चैतन्य वस्तु का ज्ञान कराया, उसका लक्ष्य कराया, तो भी न तत्परिकोप उस शादवाद का वस्तु पर कोई कोप नहीं है। एक धर्म के द्वारा कहा गया वस्तु है अनंत धर्म और कहीं कैसे गई एक वस्तु के द्वारा नियम बताएंगे। नवीन भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, सही बात है, सीधी सी बात है, किसी में अनेक विशेषताएं हैं और एक विशेषता के द्वारा उसको बताया जाए तो उसको गुस्सा आ सकता है, लेकिन यहाँ वस्तु अनंत धर्मात्मक है, कितने धर्म वाली है, अनंत धर्म वाली है और उसको कहा जा रहा है एक ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, गुस्सा आना चाहिए ना अज्ञान में कहा जाए है? लेकिन वस्तु की समझ वालों को कोई गुस्सा नहीं आता। तो शादवाद उस वस्तु को देखो क्या होता है कि शादवाद वस्तु का निर्माण नहीं करता, लेकिन शादवाद के द्वारा वस्तु का निर्णय होता है और वो निर्णय एक धर्म के कथन पूर्वक करते हैं। बात समझ में आ गई, शादवाद वस्तु का निर्माण नहीं करता, शादवाद के द्वारा वस्तु का निर्णय होता है और उसकी शैली है कि वो एक एक धर्म के द्वारा उसका निर्णय करता है। तो एक एक धर्म के द्वारा जो निर्णय करता है तो कैसे करता है, तो किसी तरह से निर्णय होता है। अब जहाँ ज्ञान मात्र कहा उसके साथ अनंत धर्म शामिल है, बात ये समझ लो कि एक ज्ञान मात्र चैतन्य वस्तु ऐसा कहने पर भी अनंत धर्म उसमें शामिल है सही, और ज्ञान मात्र ही आत्मा है ऐसा क्यों कहा, तो स्वामी जी ने उसमें आठ बिंदु बताए, उसकी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन सामान्य चर्चा पहले ये है कि वस्तु को अर्थात चैतन्य वस्तु को अनंत धर्म वाली होने पर भी एक ज्ञान मात्र कहा गया, ऐसा एक मात्र ज्ञान मात्र कहने पर ही न तत्परिकोप ज्ञान मात्र से आत्मनः आत्म वस्तुनः स्वयं एव अनेकांतत्व। ये बात बहु वैली समझने की है, क्या लिखा है यहाँ पर, इसको पूज्य गुरुदेवी ने काफी विस्तार से ही समझाया, संस्कृत में ही पंक्तिया, ज्ञान मात्र से आत्म वस्तु न, जहाँ आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र कहा गया है वहाँ वस्तु को आत्म वस्तु को मात्र ज्ञान मात्र मत समझना। समझना गया, क्यों नहीं समझना है? आगे कैसे लिखा है, क्योंकि स्वयं एव अनेकांतत्व, चैतन्य आत्म वस्तु भी ज्ञान मात्र कही जा रही है, लेकिन ज्ञान मात्र मत समझना, ज्ञान मात्र क्यों नहीं समझेगा, तर्क दिया है कि अनेकांतत्व हेतु दिया है कि कोई भी वस्तु हो ऊपर जाई की पंक्ति सतु सर्वम अनेकांतत्मक इति अनुशासित, कि ये तो पहले ही कहता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं प्रत्येक वस्तु कैसी है, अनेकांत। अभी भी चर्चा अभी जो निकल आई थी शक्तियों के बारे में भी समय साल में भी 136 नंबर के कलश में भी अचिंत शक्ति स्वयं शक्ति पावर की चर्चा करी, पावर कितनी ये अचिन्ह एक अखबार नहीं, दो अखबार नहीं है, कितनी है ये आत्मा में एक एक शक्ति कैसे अनंत अचिन्ह कैसे है। नींद मत लेना पड़ेगा। मणिकांत भाई, रमेश भाई का प्रसंग है, स्वामी जी को वहाँ प्रवचन सुनने गए। स्वामी जी का प्रवचन सुनकर आने के बाद रमेश भाई ने कहा बिस्तर लगा दे, तो मणिकांत भाई कहते हैं कि भैया स्वामी जी जैसी वाणी बार बार सुनने को नहीं मिले, बहु का अभाव करने वाली बात, जहाँ हो वहाँ यदि नींद की सोने की चर्चा करे तो फिर जागने का अवसर कहाँ मिले। यहाँ अपनी शक्ति की चर्चा है, किसी और की नहीं। चैतन्य जाए भगवान आत्मा में एक एक शक्ति कैसी है, अचिंत है, इस कल्पना से बाहर है, अंतर्मुखी दृष्टि नहीं होने से, दृष्टि बहिर्मुख होने से जीवों को अपने स्वरूप की महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? अपने स्वरूप को देखा नहीं, अपने स्वरूप को जाना नहीं, इसलिए अपनी महिमा नहीं आती। अपने स्वरूप को देखे तो स्वरूप की महिमा आए। एक शक्ति कैसी घड़ी पड़ी है अचिन, जिसकी आप चिंता कल्पना नहीं कर सकते। उसी श्लोक में एक शब्द है कि आत्म वस्तु कैसी है, कि तेरे जितने भी प्रयोजन सर्व अर्थ जितने भी तेरे प्रयोजन है, उन सभी अर्थों का प्रयोजनों की पूर्ति करने वाला है। कई विशेषण उसमें बताए, एक तो ये बताया कि अचिंत्य शक्ति, कि अपनी चैतन्य वस्तु कैसी, निज चैतन्य वस्तु कैसी, अचिंत्य शक्तियों से भरी और कैसी, स्वयमेव देव दिव धातु से देव शब्द बना, अपने अनंत गुणों से, अपने अनंत शक्तियों से चैतन्य जायक भगवान आत्मा सदा प्रकाशमान है। जैन श्री को कहते हैं कि जाग तो जीव उबोध थे, नवीन भाई जाग तो जीव उबोध थे तो क्या जाए। अंतरंग में सदा काल विराजमान है प्रभु तेरी दृष्टि, जो बाहर में है वो बाहर की दृष्टि अंतर्मुख करे तो तेरी दृष्टि में आए। वो सदा जागृत है, उभा है, अचिंत्य शक्तियों से भरा हुआ है, स्वयं देव। एक समझ नंबर बच्चों की स्वयं देव है, देव है, प्रकाशमान है और तिन्मात्र चिंतामणि, तिन्मात्र है और कैसा है चिंतामणि है। उसमें बारह भावनाओं में धर्म भावना में ऐसा है कि जागृत सुरतरु देव, कल्प वृक्षों से मांगना पड़ता है, है? चिंतामणि रत्न के सामने चिंता करनी पड़ती है। यहाँ न मांगने की जरूरत है, न चिंता करने की जरूरत है, सिर्फ स्वीकार करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सिर्फ स्वीकार करने की जरूरत है, दृष्टि को उस ओर ले जाने की जरूरत है। वहाँ दृष्टि नहीं थी, वह उसका स्वीकार नहीं किया, इसलिए अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी सुख के लिए पर की ओर देखता है। इसीलिए शब्द है सर्व अर्थ सिद्धात्मतया, क्या शब्द है बाबू भाई जी? अच्छा शब्द है ये सर्व अर्थ। रजनी भाई, अर्थ का अर्थ क्या है यहाँ? प्रयोजन, कि सभी तेरे जितने भी प्रयोजन, जितने भी तेरी इच्छाएं हैं, जो तेरे प्रयोजन हैं, उन सभी प्रयोजनों का स्वभाव से ही सिद्ध करना उसका स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? स्वभाव से ही प्रयोजनों की पूर्ति करना उसका स्वभाव है। अज्ञान दशा में इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुख और आनंद के लिए जो यह जीव संसार में विषय भोगों में परिग्रह में भटकता है, उसकी आवश्यकता ज्ञानियों को नहीं रहती, इसलिए उनका त्याग करते, उनके द्वारा त्याग हो जाता है। क्यों नहीं, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सर्व अर्थ सिद्ध कि चैतन्य जायक भगवान आत्मा का ये स्वभाव है, ये स्वरूप है। क्या है? कौन सा शब्द है लाला जी? सर्व अर्थ सिद्ध कि सभी प्रयोजनों की सिद्धि यहीं से अपने से होती है। दृष्टि निदान पर नहीं होने से यहाँ वहाँ इधर उधर क्यों भटकता है? एक जवाब, अज्ञानी इंद्रिय विषयों में पर द्रव्यों में पर द्रव्यों के संग्रह आदि की बुद्धि में क्यों भटकता है? जवाब है क्योंकि इसने अपने स्वरूप का अवलोकन नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं देखा। अज्ञानी ने अपना स्वरूप नहीं देखा, इसलिए वह बाहर भटकता है, पर द्रव्यों की ओर सुख के लिए भटकता है। और आचार्य देव इस 144 कलश में कहते हैं कि सर्व सिद्ध सर्व अर्थ सिद्ध, इस सभी प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। यहाँ जो परिशिष्ट है इसमें एक धर्म के द्वारा, ज्ञान मात्र के द्वारा, एक शक्ति के द्वारा कहा गया, लेकिन यहाँ उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ज्ञानी के द्वारा एक ज्ञान मात्र चैतन्य वस्तु नहीं जाने पर भी आत्म वस्तु स्वयं अनेकांत स्वरूप होने से अनंत धर्म उसके साथ उछलते, अनंत गुणों का पिंड चैतन्य जायक भगवान आप वस्तु है, इसका निर्णय होने के बाद स्वामी के प्रवचन में एक बात और आई है, वो ये है कि ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसा कहा तो उसने ज्ञान का और आत्मा का भेद बड़ा के नहीं करा, लक्षण का और लक्ष्य का भेद कर लिया। लक्षण और लक्ष्य का भेद पड़ा तो ऐसा भेद ही क्यों किया? प्रश्न ऐसा कि आज बिंदु है जिसमें ज्ञान मात्र आत्मा क्यों का, इसकी चर्चा स्वामी के खुलासे में आ, उसकी चर्चा हम करेंगे। उसमें ये एक प्रश्न आ कि लक्षण और लक्ष्य, ज्ञान लक्षण और आत्मा उसका लक्ष्य, ऐसा भेद किया तो प्रश्न किया कि लक्ष्य और लक्षण में भेद क्यों का? अभेद ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ऐसे कह देते। तो स्वामी जी ने जवाब वहां ये दिया कि जिसे अनुभव वर्तता है, क्या जवाब दिया कि जिसे अनुभव वर्तता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जवाब दिया कि जिसे अनुभव वर्तता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य लक्षण के द्वारा भेद करके समझाए जाने पर ही जिसे अनुभव वर्तता है उसकी दृष्टि तो अभेद पर ही रहती है, उसे सदाकाल चैतन्य जाए भगवान आत्मा ही झलकता है। एक ज्ञान मात्र आत्म वस्तु है ऐसा कहने पर ही ज्ञान मात्र वस्तु कहने के काल में ही आत्म वस्तु में अनेकांत बना अनेक धर्म उस काल में भी विद्यमान रहते हैं और अनेक धर्म उसमें विद्यमान रहने का कारण से चैतन्य वस्तु को ज्ञान मात्र कहा गया तब भी ज्ञान मात्र मत समझना उसे अनंत धर्म वाला ही समझ। कहने में इतना आया लेकिन समझने में क्या आना चाहिए? एक ज्ञान मात्र समझने नहीं आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि उस काल में भी अनंत धर्म उसके साथ है, उस काल में भी वह अनंत गुणों का पिंड है ऐसा ही समझना। कहने में इतना आया लेकिन समझना ऐसा। अब स्वामी जी के प्रवचनों के आधार पर कि ज्ञान मात्र क्यों बताओ, पहला बिंदु प्रारंभ में ही ये बताया कि पर द्रव्यों और पर भावों से भिन्न बताने के लिए, क्या है पहला बिंदु, पर द्रव्य और पर भावों से चैतन्य मात्र जायक वस्तु निज भगवान आत्मा को भिन्न बताने की। समझ में आ गया कि ज्ञान मात्र क्यों कहा, कि ज्ञान मात्र इसलिए कहा उसके पीछे अनेक कारण है कि पर वस्तु और पर भाव और जितने भी विकारी भाव है उन सब से भिन्न बताने के लिए आत्म वस्तु को ज्ञान मात्र कहा। दूसरा बिंदु, उसके साथ अनंत पापनी अनंत शक्तियाँ विद्यमान, किसके साथ ज्ञान मात्र के साथ अंत पापनी अनंत शक्तियाँ है। उत्साह से सुनना, ध्यान से सुनना, आत्म कल्याण की भावना से सुनना, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं सुनना। और ये जितना भी निवेदन है पूर्व उद्देश्य के जो प्रवचन है उन्हीं के अनुसार है, उसमें अच्छा मर्म खोला गया कि आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा कि उसके साथ अंतः पाटनी अनंत शक्तिया उसी काल में है। तो यहाँ ज्ञान मात्र का अर्थ क्या, पूज्य उद्देश्य ने इस बिंदु के खुलासे के समय ये कहा कि उसके साथ अंतः पाटनी अनंत शक्तियाँ उतरती है। तो यहाँ कौन सा ज्ञान देगा, ये भी खुलासा किया कि जो ज्ञान शुद्ध चैतन्य जाए भगवान आत्मा की ओर उन्मुख है, जो ज्ञान चैतन्य जाए भगवान आत्मा को विषय बना रहा है, ऐसे ज्ञान के साथ पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो अभवी है उस अभवी को भी ज्ञान का अंश है लेकिन ज्ञान की परिणति नहीं। अभवी को भी ज्ञान का अंश है लेकिन ज्ञान की परिणति नहीं, अंश है परिणति नहीं है। तो वो अंश वाले ज्ञान की चर्चा यहाँ पर नहीं है। ज्ञान मात्र आत्मा कहा जो ज्ञान त्रिकालीन चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाता है, जिसके ज्ञान परिणति में चैतन्य जायक भगवान आत्मा दिखाई देता है, विद्यमान होता है, ऐसे ज्ञान परिणति के साथ अनंत शक्तियाँ उतरती है। ऐसे ज्ञान को यहाँ ज्ञान मात्र कह करके आत्मा को ही बताया। किसको बताया, स्वामी जी ने बार बार इसमें प्रवचनों में आई बात कि यहाँ शक्तियों के ज्ञान के द्वारा शक्तिमान भगवान आत्मा को लक्ष्य कराना प्रयोजन है। समझ वाली बात कि यहाँ एक शक्ति का या 47 शक्तियों का ज्ञान कराना यह प्रयोजन नहीं है। शक्तिमान शक्ति पिंड चैतन्य जायक भगवान आत्मा का ज्ञान कराना ये प्रयोजन है। 47 शक्तियाँ तो एक नमूने के तौर पर बताई है। ऐसी अनंतानंत शक्तियाँ एक चैतन्य जीव द्रव्य में है। 47 तो क्या इतनी ही है कि प्रभु ऐसा नहीं है। अनंतानंत शक्तियों का पिंड तू स्वयं है। प्रत्येक आत्मा में अनंतानंत शक्तियाँ सदाकाल विराजमान है। शक्तियों का ज्ञान करा करके सिर्फ शक्तियों का ज्ञान नहीं करा। शक्तिमान चैतन्य जायक भगवान उसका ज्ञान कराना है। शक्तियों के ज्ञान में मत अटकना, इससे भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। कई शक्तियाँ लक्ष्य रूप है और कई शक्तियाँ रजनी भाई लक्षण रूप है। स्वामी जी के खुलासे में ये बात आई है कि कई शक्तियाँ लक्ष्य रूप है, ये नहीं बात है। जैसे जीवत्व शक्ति लक्ष्य रूप है और चित्त शक्ति उसके लक्षण रूप है, मतलब सभी शक्तियाँ समान है, ऐसा नहीं। ऐसा स्वामी जी के खुलासे कि जीवत्व शक्ति का लक्षण चित्त शक्ति ये है। तो सभी शक्तियाँ समान नहीं है। जीवत्व शक्ति दूसरी जाता में से आई है, ऐसा स्वामी जी ने कहा। और उस जीवत्व शक्ति का लक्षण कौन सी शक्ति है, उसी चर्चा पर आगे करेंगे। सभी शक्तियाँ समान नहीं है। कोई लक्ष्य रूप है तो कोई लक्षण रूप है। तो ऐसी शक्तियाँ अनंतानंत प्रति समय प्रत्येक जीव में है। ये उस पिंड रूप अभी ज्ञान शक्ति की भी अपनी चर्चा करने की करने का विचार है कि जैसे उपाय उपाय भाव में क्या निर्णय करना है कि उपाय उपाय भाव की दृष्टि में कि ज्ञान को ही उपाय बताया और ज्ञान को ही बराबर है। सभी का इतना स्वाध्याय कि मुझे बताया कि सारे स्वाध्याय नहीं है। मैंने कहा फिर मैं क्या कर रहा हूँ। आवश्यकता नहीं स्वाध्यायों के बीच में। ज्ञान को ही क्या बताया, लक्षण बताया। ज्ञान को ही लक्ष्य बताया, ज्ञान को ही उपाय बताया और ज्ञान को ही उपाय बताया। ज्ञान मतलब क्या, समर अधिकारी उपयोग में उपयोग है। इसमें उपयोग में उपयोग है तो कौन सा उपयोग ज्ञान है और कौन सा उपयोग ज्ञान द्रव्य है, ये भेद तो करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ ज्ञान उपेय है बराबर और ज्ञान ही उपाय है। तो ज्ञान जो उपेय है तो वो ज्ञान अकेला ज्ञान नहीं, अपने साथ अनंत शक्ति अनंत गुण अनंत स्वभाव का अवेद अखंड पिंड वह ज्ञान को उपेय बराबर। अखंड नींद तो नहीं आती है। कौन सा ज्ञान उपेय है कि अखंड पिंड जो अपने साथ अनंत शक्तियों को अनंत गुणों को अनंत धर्मों को अनंत स्वभावों को पिंड रूप में इकट्ठा किया हुआ है, शामिल किया हुआ है, ऐसा अभेद अखंड पिंड ज्ञान, वह ज्ञान उदय है। और उस अखंड पिंड में शामिल जो पिंड रूप है, उससे भिन्न जो ज्ञान इस रूप अनुभव करता है, ऐसा ज्ञान उपाय करते बराबर है। ये अखंड पिंड में शामिल जो ज्ञान है, वह ज्ञान अपने आप को जब इस रूप में अनुभव करता है कि मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ, ऐसा ज्ञान उपाय करते है। छात्रों में घूमने वाला ज्ञान है, या गाथाओं का निर्णय करने वाला ज्ञान, इंद्रिय विषय भोगों में निर्णय करने वाले ज्ञान की यहाँ चर्चा ही नहीं। देखो ज्ञान ही नहीं, प्रयोजन भूत नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं। देखो बाजार में इधर उधर खड़े हो जाएंगे तो समाज में उठेगा, ये क्या कर रहा है, ये तो कोई पाप के कार्य करे तो समाज को, मंदिर में बैठे साझा करे तो यहाँ कौन तो हो, यहाँ पंच परमेश्वरी बोलते है। तेरा ज्ञान जो इंद्रिय से भोगों की तरह शब्दों के वाचन में जा रहा है, वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान ही नहीं, वो उपाय तत्व नहीं। हाँ, वो जो देहलुब्ध ज्ञान है, उस देहलुब्ध ज्ञान की चर्चा यहाँ उपाय के रूप में नहीं। ज्ञान जीव का, ज्ञान जीव का ही है, लेकिन कौन सा ज्ञान बात नहीं है। कौन सा ज्ञान जो उपाय तत्व है, कि वह ज्ञान उपाय तत्व है जो अखंड पिंड को ग्रहण करने के लिए उससे सम्मुख हुआ है। हाँ, अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, वो अनुभव करने वाला ज्ञान ही उपाय तत्व है। क्योंकि एक तरफ उसको उपाय तत्व भी कहे और प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं हो तो उसमें उपाय का आरोप भी संभव नहीं। बराबर, ये आरोप भी संभव नहीं होगा। जो ज्ञान अपने प्रयोजन की सिद्धि करेगा वही ज्ञान उपाय तत्व है, और जो ज्ञान प्रयोजन की सिद्धि नहीं करे वो ज्ञान उपाय तत्व भी नहीं है, पहले में भी नहीं आएगा। जब वो सिद्धि करे तो ज्ञान ही सिद्धि करेगा, इसलिए ज्ञान ही उपाय तत्व है। क्योंकि स्वामी जी के प्रवचन में एक पंक्ति आई, उसमें तीसरे बिंदु में बात आई थी कि ज्ञान तो सविकल्प है, ज्ञान सविकल्प है, वही स्वपर प्रकाशक है, वही निर्णय करता है, श्रद्धा आदि गुणों का ऐसा स्वरूप नहीं। स्वामी जी के प्रवचनों में ये बात आई है, पढ़ना आप, उसमें ये बात आई है, सुनना, दोनों विकल्प है, पढ़ने के लिए है और सुनने के लिए, कि श्रद्धा आदि गुण ये निर्विकल्प रूप है। क्या लिखा है, यह स्वामी जी के प्रवचन में क्या है, श्रद्धा आदि गुण निर्विकल्प है, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहने के पीछे हेतु ये भी है, क्योंकि बाकी गुणों का स्वरूप ऐसा नहीं है, लेकिन एक ज्ञान मात्र वस्तु, ज्ञान ज्ञान मात्र वस्तु को ग्रहण कराने वाला ज्ञान, उसके द्वारा ज्ञान मात्र वस्तु कहा, क्योंकि वही स्वपर प्रकाशक है, और उस स्वपर प्रकाशक होने से सविकल्प भी है, उसके द्वारा स्व और पर का निर्णय होता है, इसलिए उसको उपाय तत्व के रूप में भी बताया। किस रूप में बताया, उपाय, ज्ञान ही उपेय है और ज्ञान ही उपाय है। अखंड स्वरूप का निर्णय करने वाला ज्ञान उपाय तत्व है, और अखंड स्वरूप ज्ञान जो अनंत गुणों को धारण किए हुए है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा वही उपेय तत्व है। ज्ञानियों का जीवन तो इसी के रूप में चलता, अज्ञानी शब्दों में उलझे और जगह उलझे, लेकिन ज्ञानी साध्य साधक बने वो अपने उपयोग को रमाते हैं कि मैं ही उपाय हूँ और मेरे लिए मैं ही उपेय हूँ। उपाय भी मैं और उपेय भी मैं, मेरे लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं साधन और जोड़ लूं, शिविर में जाऊं, प्रवचन में बैठूं, इतनी ही अटक नहीं, यहाँ बैठने की अटक नहीं और सच्चे पुरुषार्थी को यहाँ सुनने से भी अटक नहीं है। ये सुनना पड़े तो निर्णय हो एक नती सुनने की भी दरकार नहीं। स्वामी जी 45 वर्ष तक जिस बात को मुख्य रख करके चले हैं, वो चैतन्य जायक भगवान आत्मा प्रत्येक जीव ऐसा है। स्वामी जी के अनेक प्रवचनों में आपने भी सुना कि यहाँ आचार्य भगवान करने पुकारे थे, कि भगवान कहकर के पुकारते हैं किसको, और तू सिर्फ स्वीकार नहीं कर रहा है। यहाँ उपाय भी ज्ञान तक और उपेय भी ज्ञान तक अनंत गुणों का केंद्र, कि एक ज्ञान कहने से अनंत गुण अनंत शक्तियाँ उसके साथ उछलती है, ये उछलती है, ये नियम है, लेकिन किसके लिए ये ज्ञान के साथ, अरे प्रभु अनंत शक्तियाँ उछलती है लेकिन अनंत शक्तियाँ कब उछलेंगी इस समय उछलेंगी, लेकिन किसके लिए, कि जिसने ऐसा स्वीकार किया है उसके लिए इसी समय ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के साथ ऐसे स्वीकार होते ही अनंत शक्तियाँ उसी समय उछलती, शक्तियों के अधिकार में निर्मल परिणतियों की चर्चा है। ऐसा कुछ गुरुदेव ने समझाया है। क्या मतलब इसका, कि जिसने चैतन्य जायक वस्तु को स्वीकार किया है उसी के लिए ऐसा अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा है। बात समझ में आई, यहाँ निर्मल परिणतियों की ही चर्चा है। क्यों ऐसा, कि जिसने अनंत शक्ति स्वरूप मैं हूँ ऐसा स्वीकार किया उसकी परिणति में मलिनता नहीं रहती, उसकी परिणति में अनंत शक्तियाँ निर्मल बने परिणमित होती है। एक बात और है स्वामी के प्रवचनों में कि शक्तियाँ ये अक्रम रहती है, उनका परिणमन क्रम से होता है। यहाँ कौन सी शक्ति नहीं, कौन सी शक्तियों की चर्चा, ये रहती अक्रम और परिणमन उनका क्रम से। दूसरी बात, क्रम कर परिणमन में मलिनता नहीं लेनी, निर्मलता की ही चर्चा है, निर्मल परिणमन की ही चर्चा है। कि स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए, समझ में नहीं आती उदाहरण, कि जैसे गुरु किसी ने मांगा, दो उदाहरण दिए, मित्र का दिया गुरु का दिया, हमें गुरु दो मिठास नहीं चाहिए, गुरु चाहिए मिठास नहीं चाहिए, और मित्र के उदाहरण में बताया कि उसकी मिठास मिठास दे दो, हमें सफेदी और वजन और दूसरा स्पर्श वो नहीं चाहिए। भैया यदि मिश्री चाहिए हो तो बाकी सारे अनंत जो भी उसके गुण है उसके साथ आएंगे। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा, सिर्फ एक को मांगोगे और दूसरा नहीं चाहिए हो तो जो गुण और मिठास का उदाहरण लिया, गुण और द्रव्य के लिए मिठास और मिश्री का उदाहरण दिया, पर्याय बिना नहीं है। दो अलग अलग उदाहरण स्वामी जी का तो हर समय विवेक और वो समझाने का शैली का प्रकार है। यहाँ पे ये समझना है कि जैसे मिश्री से एक मिठास के साथ बाकी गुण समाहित है, उसको हम कह सकते हैं कि सबके समय वो शामिल है। ऐसे ही जब चैतन्य व्यायक भगवान आत्मा को ज्ञान पर्याय के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो अनंत गुण उसमें समाहित है, केवल एक गुण वहाँ पर नहीं आता है, अनंत गुण उसमें शामिल है और अनंत गुणों की पर्याय भी उस काल में मलिन नहीं बल्कि निर्मल रूप से ही परिणमित होती है। ऐसा चैतन्य जाए भगवान आत्मा ये ज्ञान मात्र क्यों कहा? तो अगला चौथा बिंदु ये है, तीन बिंदु हो गए। पहली बात कि पर द्रव्यों से और पर भावों से भिन्न बताने के लिए ज्ञान मात्र कहा, और ज्ञान मात्र कहने के साथ उसके साथ अंत पात्री अनंत शक्तियाँ भी शामिल है, इसलिए ज्ञान मात्र कहा। श्रद्धा की गुण निर्विकल्प रूप है, यही ज्ञान मात्र कहने के पीछे कारण ये है कि यही ज्ञान एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वह स्वतः प्रकाशक बनने के कारण से अपना भी और पर का भी। देखो इसमें स्वामी जी का या शास्त्रों का या आचार्यों का आशय ये भी है कि ज्ञान को राग से दिक्कत नहीं। सुबह चर्चा आई थी कि सागवाद की शुद्धि के लिए, किसके लिए? सागवाद की बराबर, कि सागवाद की शुद्धि के लिए वे परिशिष्ट लिखा, तो सागवाद अशुद्ध कब हुआ? सागवाद अशुद्ध कब हुआ? बाकी तो नहीं थी। तो ज्ञान में जब राग मिश्रित ज्ञान हो जाता है तो ये सागवाद की अशुद्धि। राग मिश्रित ज्ञान होता है तो ये सागवाद की अशुद्धि। जो ज्ञान सिद्ध चैतन्य जाए भगवान आत्मा को राग रहित विकार रहित शरीर रहित पर द्रव्य से भिन्न अनंत गुणों से भरा हुआ ऐसा स्वीकार करता है तो ऐसा ज्ञान अशुद्ध नहीं और अशुद्ध अशुद्धि को उत्पन्न करने वाला ही नहीं है। ऐसा ज्ञान संसार का कारण नहीं, ऐसा ज्ञान संसार में रुलाने वाला नहीं, ऐसा ज्ञान दुख उत्पन्न करने वाला नहीं, ऐसा ज्ञान सुख उत्पन्न करने वाला है। अपने आप को अनंत गुण रूप अनंत धर्म रूप अनंत स्वभाव रूप स्वीकार करने वाला ऐसा ज्ञान ये सागवाद की सिद्धि का सिद्धि वाला ज्ञान कहे ये सागवाद की सिद्धि। जब यह ज्ञान राग मिश्रित हो सके, ज्ञान को राग से दिक्कत नहीं, ज्ञान को शरीर से दिक्कत नहीं, ज्ञान को खनिज पर्याय से दिक्कत नहीं, परंतु जो ज्ञान अपने आप को खनिज अनुभव करता है, जो ज्ञान अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता है, जो ज्ञान अपने आप को राग सहित अनुभव करता है, वही सागवाद सिद्ध होता है। बराबर इस सागवाद की सिद्धि तब, क्योंकि सागवाद की शुद्धि होते ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। बराबर इस सागवाद की शुद्धि होते ही क्या प्रारंभ होता है? मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानने में आप, तो सागवाद की शुद्धि का मतलब क्या? कि राग रहित विकार रहित शरीर रहित परद्रव्यों से भिन्न और अपने आप में मैं अभिन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, अखंड हूँ, जल है ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा जो ज्ञान स्वीकार करता है वही शुद्ध ज्ञान है, वही ज्ञान की जागवाद की स्थिति है। अपने आप को विकारी स्वीकार करे और नए और न्याय शास्त्र के अनंत शास्त्रों का ज्ञान हो तो भी ज्ञान तो है लेकिन उसके ज्ञान की शुद्धि अर्थात जागवाद की शुद्धि नहीं। बात समझ वाले तो उपाय उपे भाव और वस्तु तत्व दोनों सही रूप में ग्रहण होने के बाद त्यागवाद में अशुद्धि नहीं रहती। मी नारी हो तो एक बार जाग जाओ क्या है इस त्यागवाद की सिद्धि का कि वस्तु स्थिति सही समझ में आ जाए और उपाय उपाय तत्व का निर्णय हो जाए। पक्का निर्णय विकल्पात्मक निर्णय की बात यहाँ नहीं है, पक्का निर्णय हो जाए क्योंकि सच्चे और पक्के निर्णय के बिना परिणति नहीं। ज्ञान में निर्णय हो गया लेकिन पुरुषार्थ के अभाव में परिणति नहीं हो पा रही है तो वहाँ भी अभी त्यागवाद विकल्पों में शुद्ध है, परिणति में शुद्ध नहीं। समझ मानी बात, वहाँ त्यागवाद कैसा है, विकल्पों में तो शुद्ध है लेकिन अभी परिणति में बाबू भाई अभी परिणति में शुद्ध नहीं है। विकल्पों में बहुत से जीव है कि स्वामी जी के निमित्त से इस मार्ग पर आए और इस मार्ग पर आते हुए जानते भी है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है परंतु अभी उनका त्यागवाद विकल्पों में तो शुद्ध है लेकिन परिणति में शुद्ध नहीं। पर वास्तव में निश्चय से तो वहाँ भी अभी भी अभिप्राय में वासना में पड़ी हुई होने से वो भी शुद्धि नहीं। बात समझना है कि उपाय उपेय भाव और वस्तु तत्व व्यवस्थित अमृत चंद्र के बोल सकते कि जब वस्तु तत्व की व्यवस्थित और उपाय उपेय भाव समझ में आ जाए तो त्यागवाद की शुद्धि होती है और अभी इनमें ही फेर है तो त्यागवाद की शुद्धि नहीं है। आगे ये कहते हैं कि आवाज समझे खुलाते हैं से ज्ञान मात्र आत्मा को क्यों कहा कि आवाज गोपाल सभी के लिए ज्ञान ही प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, ज्ञान ही प्रसिद्ध है, उस ज्ञान के द्वारा ही आचार्यों का प्रयोजन क्या, ग्रंथ लिखना गहराई से शक्तियाँ बताना ये आचार्यों का प्रयोजन नहीं। मेरे बात अनेक प्रकार की ऋषि वाले जीव है और सभी प्रकार के ऋषि वाले जीवों के लिए रुचियाँ भिन्न भिन्न है लेकिन रुचि का विषय एक ही, रुचियाँ भिन्न भिन्न है लेकिन रुचियों का विषय भिन्न भिन्न है। जब तक चैतन्य वस्तु दृष्टि का विषय नहीं बने तब तक ये विस्तार से ही समझाते, समय कम हो तो ये भी कहते जैसे कोई अब वहाँ मरणासन्न कोई जीव है उसके परिणाम अब यह आयु कुछ समय की है अब उसको अपने कहे कि स्थिति शक्ति जीवत्व शक्ति तो वो कहाँ तक सुनेगा। ऋषि बीच में नवीन जी नवीन भाई आयु पूरी हो जाए तो संक्षेप में क्या समझाना कि भैया तू तो शरीर से भिन्न है, पर्याय से भिन्न है, विकास से भिन्न है, अनंत गुणों का पिंड है, चैतन्य ज्योति वस्तु है, यही एकमात्र निर्णय कर और ऐसा ही अनुभव कर क्योंकि समय कम है। जिनके पास समय कम है ऐसा लगे तो निर्णय इतना ही चाहिए। भरना धन नहीं है। बाबू भाई जी कहते हैं कि अपने बाद भी समय कम है, समय कम है, समय वास्तव में कम है रजनी भाई। आगे पांचवा बिंदु है कि ज्ञान पूर्वक निर्णय होता है, ज्ञान पूर्वक निर्णय होता है, लेकिन ये अभी बात है। आगे निर्णय पूर्वक ज्ञान भाव सुख ज्ञान होता है। बात समझ में आ गई क्या है कि ज्ञान पूर्वक निर्णय होता है, निर्णय पूर्वक ज्ञान भाव सुख ज्ञान होता है। ज्ञान पूर्वक निर्णय होता है, इसलिए ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहा, लेकिन निर्णय के बाद ही चैतन्य वस्तु मैं हूँ ऐसा निर्णय होने के बाद ही ज्ञान भाव सिद्ध ज्ञान होता है। तो उस भाव सिद्ध ज्ञान को यहाँ ज्ञान मात्र आत्म वस्तु कहा। चार बिंदु हो गए हैं और चार बिंदु इसके रह गए हैं। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। पूज्य गुरुदेव जी के खुलासे में ये बात आई है कि ज्ञान सर्व समाधान कारक है। इसकी चर्चा अपन कल सुबह के साध्याय में करेंगे कि सभी ज्ञान सर्व समाधान कारक नहीं है, सभी ज्ञान सर्व समाधान कारक नहीं होते हैं। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, इसलिए इसे ज्ञान मात्र कहा, परंतु सभी ज्ञान समाधान कारक सर्व समाधान कारक नहीं होते हैं। इसकी चर्चा कल करेंगे, आपका समय होते हैं।